भारतीय वैदिक मूल के बहरीन में रहने वाले हिस्तान के साथ सहयोग करते हुए आध्यात्मिक शिक्षा का ये सात दिन का जो कार्यक्रम रखा है उसमें आप सबका स्वागत है। ये स्कूल है इसमें विद्या दी जाती है और वेद शब्द से विद्या निकला है। वेद का मतलब ज्ञान और वेद से विद्या बनता है। दुनिया पूरी के अंदर एक विद्या तो दी जा रही है, शरीर को कैसे चलाया जाए, लेकिन हम अपनी पहचान को ढूंढे तो हम दो चीज के बने हुए हैं। एक तो जीवन शक्ति है आत्मा जो हमको चला रही है और दूसरा ये शरीर है जो मशीन गाड़ी की तरह चल रहा है। तो दो चीजों के हम बने हुए हैं, ये पहले समझना चाहिए कि हम दो चीजों के बने हुए हैं। क्योंकि शरीर का हम सबको अनुभव है कि आत्मा निकलने के बाद कोई घर में रखने को तैयार नहीं होता है। तो आत्मा और शरीर दो चीजों के हम बने हुए हैं। शरीर का विज्ञान तो सारे विश्व में मिलता है लेकिन आत्मा के विज्ञान का अभाव है दुनिया में। तो ये आत्मा के विज्ञान का सात दिन का सत्र है। क्योंकि शांति आत्मा की विद्या में है, सुख आत्मा की विद्या में है। शरीर की विद्या तो निर्वाह के लिए है, दो टाइम की रोटी खाने के लिए, छत सर के ऊपर छत हो जाए इसके लिए है, लेकिन सुख शांति उसमें नहीं है। तो ये एजुकेशनल जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, ये स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसके फाउंडर ने पासपोर्ट में अपने प्रोफेशन को लिखा है टीचर। श्री प्रभुपाद का प्रोफेशन पासपोर्ट में है टीचर। तो हम विश्व भर में एजुकेशन देते हैं, काहे की चरित्र निर्माण की, मॉरेलिटी। मॉरेलिटी की एजुकेशन मानवता में अति आवश्यक है। चरित्र निर्माण नहीं होगा तो आदमी पशु के स्तर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन वो जो मॉरेलिटी है वो रिजाइड करती है स्पिरिचुअलिटी के पात्र में। जो चरित्र है वो आध्यात्मिकता के पात्र में ही पलता है। आध्यात्मिकता का अभाव हो गया तो चरित्र का पतन हो जाएगा और ये सारे विश्व में हो रहा है आज। चरित्र का पतन हो रहा है विश्व में, ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, स्टूडेंट टीचर का सम्मान नहीं करते हैं। ये जो परिस्थितियां आई है इसका एक ही कारण है, आध्यात्मिकता का अभाव। तो अपन भागवत जो भगवान के समान है, भागवत का मतलब जो भगवान के समान है, वो उसका अवतार हुआ ही क्यों? व्यास देव वेदों का पूर्ण विस्तार करने के बाद एक वेद को चार में विभाजित करके उन वेदों के समझाने के लिए उपनिषद को लिखा, वेदांत सूत्र को लिखा, 17 पुराण लिखे, महाभारत का रचना किया, फिर भी संतुष्ट नहीं। बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पे व्यास चिंता में है कि लोगों का भला करना चाहता हूं, लेकिन इतना कुछ ज्ञान देने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो देने वाला संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला संतुष्ट कहां से होगा? उस वक्त भगवान का अवतार नारद वहां प्रकट होता है। वैसे नारद बद्री का आश्रम में ही रहता है, नारद का आराध्य देव बद्री नारायण है और भारतवर्ष का आराध्य देव बद्री नारायण है भारतवर्ष का, और वहां नारद जी रहते हैं। नारद ने आते ही कहा आप समाधि में बैठकर व्यास देव देख लो कि लोगों को सुख कैसे मिलेगा, लोग शांत और सुखमय कैसे होंगे, जाओ देखो। और वो एक ही रास्ता है, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं आप कब सुख चाहते हैं, जवाब आएगा सदा के लिए, राइट। सुख कब चाहिए, सदा के लिए चाहिए। कहां चाहिए, घर में चाहिए कि दुकान में चाहिए, सब जगह चाहिए। सुख सदा के लिए चाहिए, सुख सब जगह चाहिए, तो उसके पास जो हो जाओ जो सब जगह है और जो जो सब समय है वही आपको सदा के लिए सुख दे सकता है। बहुत सीधा सा प्रश्न है, आपको सुख चाहिए ये तो दुनिया कहती है, लेकिन सुख कब चाहिए, बोले सदा के लिए चाहिए। कहां चाहिए, सब जगह चाहिए। किस में चाहिए, सब में चाहिए। तो सब में कौन है, सब जगह कौन है, एक भगवान है और तो कोई नहीं हो सकता है। सब समय, सब जगह और सब में एक भगवान हो सकता है, तो उसके पास जाएंगे तभी सुख मिलेगा। तो नारद जी के कहने के ऊपर व्यास देव समाधि में बैठा और व्यास देव ने परम सत्य भगवान का दर्शन किया, पूर्ण पुरुष भगवान को देखा अपनी सारी शक्तियों के साथ। भगवान के साथ भगवान की अंतरंग शक्ति होती है जैसे चांद के साथ चांदनी, और भगवान के पीछे माया शक्ति को देखा व्यासदेव ने। ये भागवत के पहले स्कंद के सातवें अध्याय का वर्णन मैं कर रहा हूं। पूर्ण पुरुष भगवान को देखा, उसकी अंतरंग शक्ति हलादिनी शक्ति जो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है उसको देखा, और भगवान के पीछे माया शक्ति को देखा जो छाया की तरह भगवान के पूर्ण वश में थी। छाया का मतलब मेरा हाथ ऊपर करूंगा तो छाया ऊपर होगी, तो माया भगवान के वश में थी। और व्यास देव ने देखा माया के पीछे सारे जीव माया के वश में है। तो तीन शक्तियां देखा, भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की बाहरंग माया शक्ति, और भगवान की जीव शक्ति, हम जो तटस्थ शक्ति कहलाती है मार्जिनल एनर्जी, और वो तटस्थ शक्ति पूर्ण रूप से माया के वश में थी। और व्यास देव ने देखा कि ये लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि माया के कारण अपना अनर्थ कर रहे हैं। वह शब्द है अनर्थ कर रहे हैं, सभी अपना अनर्थ कर रहे हैं। क्या अनर्थ का यहां अर्थ क्या है, अनर्थ का यह अर्थ यह है कि सारे लोग शरीर को सजाने में लगे हैं, शरीर को निभाने में संभालने में लगे, लेकिन आत्मा के विषय में कोई चिंतन नहीं कर रहा है। तो अपना तो कोई हित नहीं कर रहा है, अपना तो कोई स्वार्थ नहीं देख रहा है। तब व्यास देव ने श्रीमद् भागवत का कंपाइलेशन किया, तब श्रीमद् भागवत का रचना किया और फिर लिखा कि ये श्रीमद् भागवत अनर्थ में फंसे हुए लोगों का अनर्थ शमनम, अनर्थ को नाश करेगी, अनर्थ को नाश करेगी। तो बीमारी को पहचानो और फिर एकदम दवाई बताई कि इन लोगों के दुख का एक ही साधन है, तो क्या मिलेगा भागवत के पढ़ने से। तब तीसरे श्लोक में लिखा जैसे ही भागवत का वर्णन श्रवण करेंगे, वर्णन करेंगे पहले तो भागवत पवित्र करती है वर्णन करने वाले को, फिर करती है श्रवण करने वाले को, और फिर करती है आयोजन करने वाले को, तीन को पवित्र करती है। पुनाति त्रियम, तीन को पवित्र करती है, वक्तारम श्रोतम पृष्ठम। तो व्यास देव लिखते हैं जो भी इसका केवल श्रवण करेगा, सुनेगा, जैसे आप लोग आए हैं, तत्काल उनके हृदय में भगवत प्रेम का उदय होगा, भगवत प्रेम का उदय होगा, भक्ति योग जागृत हो जाएगी, और उसका फल क्या होगा, शोक मोह भय अपह। शोक का मतलब पहले जो हमारे से कुछ छूट गया उसका शोक होता है, जैसे कोई मर जाता है तो शोक सभा होती है। शोक का मतलब पास्ट के दुख समाप्त। मोह प्रेजेंट की चीजों में होता है, ये मेरे मेरी है मेरे पास रहे, मोह नाश हो जाएगा। और भय भविष्य का होता है। तो पास्ट का, भूत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय समाप्त हो जाएगा, ये भागवत का फल है। अब दुनिया में न शोक रहे, न मोह रहे, न भय रहे, तो प्रेम से लोग रह सकते हैं सुख से। तो ये भागवत का फल बताया, तो ये भागवत के अवतार का कारण बताया। फिर भागवत की महिमा 6 अध्यायों में पद्म पुराण में है और 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में तो भागवत की कथा उद्धव कर रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, साथ उठा है बैठा है, और वो भागवत की कथा कर रहा है गोवर्धन में कुसुम सरोवर के पास, और उस कथा को सुनने के लिए बैठी है भगवान श्री कृष्ण की रानियां द्वारका से आई हुई, और उस कथा को सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के परपोत वज्रनाभ, जिन्होंने वृंदावन की स्थापना की। ये वृंदावन जो अब हमको दिखता है, ये तो जरासंध ने 18 बार आक्रमण करके नाश कर दिया था, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उसका पुत्र अनिरुद्ध और उनका पुत्र वज्रनाभ ने मथुरा मंडल में, पूरे ब्रज मंडल में भगवान के लीला स्थलियों का पुनर्निर्माण किया। ये द्वापर के एंड में और कलयुग के आरंभ में किया। तो वो कथा सुन रहा था, उस कथा के समय परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा थे। परीक्षित महाराज को कहा गया कि आप ऐसे करो, कलयुग आ गया है और वो कथा में जरूर विघ्न डालेगा, इसलिए आप जाके उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। परीक्षित कहता फिर मैं कथा कब सुनूंगा। तब कहा कि आपके लिए कथा का विशेष आयोजन किया जाएगा, वो कथा आपके लिए होगी, सिर्फ जब आप सुनेंगे तब दुनिया सुनेगी। तो कलयुग के ऊपर विजय करने के लिए, दिग्विजय के लिए परीक्षित चला गया, और यहां उस कथा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए सबके सामने। प्रहलाद साथ में आया, अर्जुन साथ में आया, और भगवान के सारे संगी साथी आए और कीर्तन करने लगे। तब सबने श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, सबसे आप क्या चाहते हैं। तो सबने एक ही कहा कि जहां भागवत का वर्णन हो वहां आप प्रकट हो जाया कीजिए, जहां भागवत का श्रवण वर्णन हो वहां श्री कृष्ण आप आ जाया कीजिए। भगवान ने कहा तथा अस्तु, ऐसे ही होगा। तो जहां भागवत की कथा होती है वहां भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में, अपनी लीला के रूप में आके भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। ये भगवान ने वहां वचन दे दिए। और उद्धव को तो भगवान ने कहा कि पहले तो मैं अपनी लीला समाप्त करके वापस गोलोक धाम वैकुंठ जाता हूं, लेकिन इस बार मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, प्रवेशो अहम भागवत अरण्यम, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं, अब मैं भागवत में रहूंगा, ये भागवत रूपी अमृत में मैं साक्षात रहूंगा। तो ये सुख का सागर है। अगर आप देखेंगे जो दशम स्कंद भागवत के पुस्तक का नाम है सुख सागर, ये पुस्तक जो छपा हुआ कभी देखेंगे पुराना हिंदी में, उसका नाम ही है सुख सागर, सुख सागर उस पुस्तक का नाम है। तो ये सुख का सागर है इसमें भगवान। और ये प्रश्न 88,000 ऋषियों ने, जिनका उद्देश्य था कलयुग के तेज गति से आगे बढ़ने को कैसे रोका जाए ताकि लोग सुखी हो जाएं, जन कल्याण का उद्देश्य था। उन्होंने प्रश्न 6 पूछे थे सूत गोस्वामी से। 6ठा प्रश्न था कि धर्म ने किसका शरण लिया। भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, अब धर्म ने किसका शरण लिया। भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, अब भगवान चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया। उसका उत्तर भागवत में लिखा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे, भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ और धर्म ने भागवत का शरण लिया। तो भागवत भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भागवत में और भागवत है श्री कृष्ण अंग, अंग का मतलब भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का एक एक अंग भागवत है। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है कि भागवत के 12 स्कंद स्कंद का अर्थ होता है पेड़ के अंदर बड़ी बड़ी डालियां होती है ना, तो भागवत को बोलते हैं कल्प वृक्ष। निगम कल्पत्रु गलितम फलम, तो वेद रूपी कल्प वृक्ष उसके 12 बड़े बड़े स्कंद हैं, उसको 12 स्कंद बोलते हैं भागवत के। तो पहला और दूसरा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, तीसरा और चौथा स्कंद जांघें हैं, पांचवा स्कंद उदर है, छठा छाती है वक्षस्थल, सातवां और आठवां दो भुजाएं हैं, नौवां कंठ है, दसवां मुस्कुराता हुआ मुख है, ग्यारहवां ललाट और बारहवां कपाल। तो ये भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। चेतन महाप्रभु कहते भागवत है श्री कृष्णेर अंग, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग। एक एक शब्द में एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण का अपने प्रेमी भक्तों के साथ जो लीला है वो एक एक अक्षर में दिखेगी। तो यहां भागवत का ये महात्म तो हो रहा है, ये कथा हो रही है वृंदावन में, और दूसरी भागवत की कथा नैमिषारण्य में हो रही है। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ कहते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम में वेणी माधव भगवान विष्णु का मंदिर है। ये 88,000 ऋषि भृगुवंश के शनक ऋषि के नेतृत्व में कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए वहां गए। तो भगवान ने कहा यहाँ तो बहुत भीड़ होती है त्रिवेणी में, अब मेरा चक्कर जहाँ जाके विश्राम करे वहां आप जाके अपना अनुष्ठान कीजिए। तो वो चक्कर वहां से चला और चक्कर नैमिषारण्य का स्थान ये 100 किलोमीटर लखनऊ से दिल्ली के रास्ते पे है, वहां ये चक्कर धरती में चला गया, वहां एक चक्कर तीर्थ बना, वहां अभी आज भी चक्कर तीर्थ है, उसमें स्नान किया जा सकता है। तो वहां ये ऋषि गए और ऋषियों ने वहां यज्ञ शुरू कर दिया। ऋषियों का मुख्य उद्देश्य यज्ञ करना था, लेकिन यज्ञ में शाम के समय लोग ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करें, इसलिए शाम को कथा का आयोजन होता था। तो सूत आउदर कथा करने के लिए आया। तो वहां भागवत की महिमा में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे, उनका वो इस पूरे दुनिया की उत्पत्ति का कारण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय उन्मूलाय, तापत्रय तीन तकलीफ सबको भोगनी पड़ती है, शरीर और मन से उत्पन्न होने वाला कष्ट, दूसरे प्राणी दुख देते हैं और प्रकृति का कोप, भूकंप आ जाए सुनामी आ जाए सबको सहनी पड़ती है, इसको बोलते हैं ताप। ताप नहीं, ताप का फल ताप, वो भी जड़ से निकाल के फेंक देता है। इसलिए लिखा है श्री कृष्ण वयम नमो, हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं सच्चिदानंद रूपाय। यहां अगर इस तीन शब्दों का अर्थ समझेंगे, सत्य का अर्थ होता है सदा रहने वाला सामान्य रूप से, चित्त का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, और आनंद का अर्थ होता है आनंद का सागर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जब ये तीन शब्द डालेंगे तो श्री कृष्ण का सत्य रूप क्या है, ये चार शब्द मेरे पीछे उच्चारण कीजिए, ये श्री कृष्ण के लिए सत्य कहलाता है। नित्य किशोर नटवर गोपवेश धर वेणुकर, ये श्री कृष्ण का सत्य रूप है। कैसे है श्री कृष्ण, नित्य किशोर, कभी भी 16 साल से बड़े नहीं होते, 15 और 16 के बीच में उनकी आयु रहती है। नित्य नव यौवनम च, सदा जवान रहते हैं, किशोर अवस्था में रहते हैं। और चलते कैसे, नटवर, भगवान शंकर को कहते हैं नटराज, वो नाचने वालों के राजा है, लेकिन नटवर मतलब नाचने वालों के राजाओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ। तो कृष्ण को नटवर क्यों से कह दिया, बोला आज तक किसी ने कालिया सांप के सर के ऊपर नृत्य किया है क्या, स्टेज के बगैर कालिया के 99 फनों के ऊपर था थी ऐसा नृत्य आज तक किसी ने नहीं किया है। ये ऐसा नटवर अद्भुत है कि ये बगैर स्टेज के भी नृत्य कर सकता है, और चलता है तो नृत्य करता हुआ चलता है, और नृत्य कौन करता है जो बहुत आनंद में होता है। और कैसा वेश धारण करता है, गोप वेश धर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोप वेशधर है। गोप वेशधर गोपाल, पगड़ी सर के ऊपर मोर मुकुट, उसके अंदर मोर का पंख लगा हुआ है, पीता पीला पीतांबर फैला हुआ है, वैजंती माला फूल कान के ऊपर रखा हुआ है, ये कृष्ण का, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ये रूप है। और हाथ में वेणु है, वेणु कर वेणु, वो बंसीधारी है, मुरलीधर है, वेणु उनके हाथ में, और किसी अवतार भगवान के हाथ में वेणु नहीं मिले। और वेणु भगवान के, और ये भगवान सत्य है, और चित्त का मतलब ज्ञान होता है, तो ये भागवत का कृष्ण से संबंध स्थापित व करने वाले ज्ञान को चित्त कहते हैं, संबंध ज्ञान, जिसके द्वारा भगवान के साथ हमारा भूला हुआ संबंध स्थापित हो जाए। हम सबका संबंध भगवान के साथ है, हम सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, हमारा उनके साथ संबंध है, हम उसको भूल गए हैं, उसको जगाना, उसको चित्त कहते हैं। तो भगवान से संबंध को जगाने को चित्त कहते हैं। और आनंद, श्री कृष्ण का आनंद रास विहार है, रस आनंद में रस मिलता है, और ये रास विहार और आनंद कृष्ण का, भगवत गीता का उपदेश कृष्ण का चित्त है। ज्ञान क्या है? कृष्ण का, भगवत गीता का उपदेश। आनंद क्या है? रास विहार। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय उन्मूलाय श्री कृष्णम वयम नमो। हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो हमारे सारे दुखों को नाश कर देंगे। और उन्होंने ये उत्पत्ति की इसलिए है कि हम उनके साथ अपने रिलेशन को, अपने संबंध को पुनः स्थापित कर ले, जो हमको भूल गया है। इस दुनिया में एक भगवान को भूलने के कारण ही सब दुखी है, और उन्हीं को उसके साथ संबंध दोबारा स्थापित हो जाए तो संसार में दुख है ही नहीं। सिर्फ इस संबंध को दोबारा रिवाइव करना है। तो इस महाभारत के, इस भागवत के महात्म में नारद जी भ्रमण करते हुए सारे ब्रह्मांड का भारत वर्ष में आते हैं। भारत वर्ष धरती का वो टुकड़ा जिसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है, इसको भारत वर्ष कहते हैं। ये भारत वर्ष की वैदिक जो डेफिनेशन है वह है सारी पृथ्वी जो समुद्र खारे पानी से घिरी हुई है, उसके अंदर छोटा एक टुकड़ा है, उसको बोलते हैं भारत खंड। वो भारत खंड जिसके अंदर गंगा जमुना बहती है, वो भारत खंड है, लेकिन भारत वर्ष इस पूरे का नाम है। ऐसे दूसरे वर्ष है, इलावर्त वर्ष, किम पुरुष वर्ष, ये दो तीन दिन में आएगा कथा में। तो भारत वर्ष में जब आया तो सब तीर्थ स्थानों में गया, हरिद्वार भी गया, नासिक भी गया, उज्जैन भी गया, सब जगह देखा कि धर्म चला गया, लोग पाप कर्मों में लगे हैं। बहुत बड़ा दुख हुआ नारद को कि कलयुग ने अपना पांव इतना पसारा है कि धर्म स्थान, धर्म की जगहों पे भी शांति नहीं है। घूमता हुआ नारद वृंदावन में आया। वृंदावन में नारद को आश्चर्य लगा कि जो भाव में होता है वो प्रकट मूर्ति के रूप में सामने आ गया। भक्ति भाव है, ज्ञान वैराग भाव है, दिखते नहीं है। ज्ञान कोई दिखा सकता है क्या? ज्ञान दिखता नहीं है, वैराग दिखता नहीं है, भक्ति दिखती नहीं है, लेकिन ये तीनों मूर्ति के रूप में नारद को वहां दिखने को मिले। सुंदर नारी के रूप में भक्ति, और दो बच्चे उसके बूढ़े पास में पड़े हैं। नारद को आश्चर्य लगा। नारद ने कहा कि आप दुखी क्यों हैं मां? बड़ी सुंदरी है, अब भक्ति है, भगवान ने आपको मुक्ति तो दासी के रूप में दे दिया था, जब से कलयुग आया है तब से मुक्ति वापस वैकुंठ चली गई, इसलिए कोई मुक्त होता ही नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, ये समस्या है ना पूरी दुनिया की, पॉपुलेशन बढ़ रही है, है ना? हमारा ये प्रश्न है कि और कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, केवल मानव की क्यों बढ़ रही है? कुत्ते बिल्ली की तो बढ़ नहीं रही है, वो तो पांच पांच छह छह बच्चों को जन्म देती है, उसकी तो बढ़ नहीं रही है, केवल मानव की क्यों बढ़ रही है? इसके ऊपर कभी विचार कोई करेगा तो इसका एक उत्तर मिलेगा कि कोई आपस मुक्त होकर भगवत धाम जा ही नहीं रहा, और नीचे के जूनियर वालों का तो अपने आप प्रोमोशन होता है, वो तो मानव बन जाते हैं, क्योंकि वो भोग जूनियर है, वो तो अपना टाइम आएगा तब तो मानव बन जाएंगे, और मानव यहां से जाना चाहिए, जा नहीं रहे तो यहां भीड़ होती जा रही है। तो असल में पॉपुलेशन इंक्रीज का कारण ये नहीं है कि बच्चे ज्यादा पैदा हो गए, एक पैदा कर रहे तब भी बढ़ रहे, कहां से आ रहे?
یہ بہت بڑا وگیان ہے اصل میں, سمجھ لو یہ سارا فیملی پلاننگ کا خرچہ بیکار کا ہے. لوگوں کو شکشا دے دو تاکہ یہاں بھگوان کے دھام جائے تو یہاں بھیڑ کم ہو جائے گی. یہاں جو یہ ہے, ہم تو اصل میں آج کل تو بڑے آج کل تو ہم پرارتھنا کرتے ہیں, ہمارے بھکتوں کی شادی میں جاتے ہیں, بھیا 10-12 بچے پیدا کرنا, تم سے نہیں پلے تو ہم کو دے دینا 10-12, ہم ان کو تیار کر کے دنیا میں سکھ کا سندیش پہنچائیں گے. اب ایک بچہ آپ پیدا کرو, ہم 2 گھنٹے پرچار کر کے اس کو بھکت بنائے, تم ہم کو ہمارے سے بھی ناراض اور آپ کی بھی بھکتی گئی, بچہ بھی گئے. 10-12 کرو بھائی, 2-4 ہم کو دیا کرو, 2-4 تم کمالا کرو تو دنیا بڑھے گی نہیں کم ہوگی, چنتا مت کر. ہم تو یہ وینتی کرتے ہیں کہ ہمارے کو تو ادھیاتمک شکشا کے لیے بہت سے بچے چاہیے اور ان کو بچپن سے اچھی شکشا دی جائے تو پھر درو پہلاد جیسے 2 بچے پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کو سکھی بنا سکتے, تو وہ بھی تو بچے ہی تھے. تو بچے, ویسے بچے کا ایک ارتھ ہوتا ہے جو بچے ہوئے ہیں, مطلب جو ابھی بگڑے نہیں ہیں. بچے کا دوسری پریبھاشا ہے جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں وہ بچے, اس لیے آپ بچے رہو تو بچے رہو گے. تو نارد جی نے بھکتی کو کہا کہ ماں تم دکھی کیوں, بولا دیکھو میرے بچے بوڑھے اور میں ماں جوان اور بچے بوڑھے, یہ تو اچھا نہیں لگتا ہے. نارد نے کہا میں آپ کو وچن دیتا ہوں ماں, میں تمہارے بچوں کو تو جوان بنا ہی دوں گا لیکن تمہارا شکشا پورے وشو کے کونے کونے تک پہنچا دوں گا, گھر گھر میں پہنچا دوں گا, من من میں پہنچا دوں گا, جن جن میں پہنچا دوں گا. اور نارد جی نے ہاتھ سے ہلایا بچوں کو, کان میں وید پڑھا, گیتا پڑھی, آنکھ کھول کے سو گئے. نارد کو چنتا ہو گئی کہ کرم سے جاگ نہیں رہے ہیں, گیان سے جاگ نہیں رہے ہیں. ہلایا تو کرم ہو گیا اور گیان ہو گیا, کان میں بتایا دونوں سے اٹھے نہیں. نارد چنتا میں بدری نارائن چلے گئے. بدری نارائن نے کہا سانتوں سے تمہارے کو راستہ ملے گا سادھوؤں سے. تب وشالا نگری میں 4 بھائی بڑے مل گئے سنکادی کمار, انہوں نے کہا نارد تم کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں, آج تم سوئم چنتا میں کیوں ہو؟ بولا چنتا میری یہ ہے میں وچن بھکتی کو دے کے آیا ہوں, دونوں بچوں کو جوان کرنا ہے, گیتا سے نہیں ہوئے, وید سے نہیں ہوئے, کیا کروں؟ سنکادی کمار کہتے ہیں نارد آپ کو معلوم ہے ان کو بھاگوت کیوں نہیں سنائی؟ نارد کہتے بھاگوت تو ویدوں سے الگ تھوڑی ہے. تب سنکادی کمار کہتے ہیں وید اور بھاگوت ایک ہی ہے لیکن انتر ایک ہے. کیا انتر ہے؟ بولا بھاگوت وید روپی ورکش کا پکا ہوا رسمے پھل ہے. اور تب ادھارن دیتے کہتے ہیں آم کے پیڑ میں رس پورے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آم کے پورے پیڑ میں رس ہوتا ہے لیکن آم کو چاقو مارنے سے رس ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا نا. آم کے لکڑی کاٹ کے کھانے سے رس نہیں ملے گا نا, لیکن آم جب پکے گا تب رس ملے گا نا. تو ایسے وید کے اندر سے رس نہیں ملے گا, وید کا پکا ہوا پھل شریمد بھاگوت اس کا رس ہے. آئیے میں آپ کو, اور 4 کماروں نے ہردوار میں آ کر سپت رشی گھاٹ پہ جہاں کہتے ہیں نندن گھاٹ ہے وہاں کتھا بھاگوت آیوجن کی, اور کتھا کرنے والے برہما جی کے پتر سب سے پہلے 4 کمار وہ کتھا کر رہے ہیں. نارد یجمان کتھا کا آیوجن کیا, سب رشیوں کو بلا کے لائے, جو نہیں آئے ان کو بھرگو آدی رشی سب آ کے بیٹھے. کتھا شروع ہوئی تو سندر ناری سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. سب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولے میں بھکتی ہوں. بولے کہاں سے پرکٹ ہوئی؟ بولے بھاگوت کے اندر سے پرکٹ ہوئی. اور اس کے ساتھ اس کے بچے ایک دم 2 جوان ہو گئے. سب نے کے آنکھوں کے سامنے بھکتی کہتی ہے تو میں کہاں بیٹھوں, میرے لیے جگہ کہاں ہے؟ سب کہتے ہیں آپ کا استھان بھکتوں کا ہردے ہے, بھکتی آپ بھکتوں کے ہردے میں بیٹھ جاؤ. نارد کہتا ہے جس بھکت کے ہردے میں بھکتی آپ بیٹھ جاؤ گی آپ کو یہ شکتی ہے گووند کو گولوک دھام سے کھینچ کے اس کے ہردے میں لا سکتی, یہ بھکتی کی شکتی ہے. تو بھکتی وہاں ساکشات پرکٹ ہو گئی. اور پھر بھاگوت کے مہاتم میں دوسرا ادھارن دیتے ہیں دندکاری کا. تو یہ کتھا تو بار بار آپ نے سنی ہوگی, اس کا ایکو تھوڑا زیادہ ہو گیا کیا؟ اب سب کو سننے میں آ رہا ہے بھائی, پیچھے تک شرون ہو رہا ہے. ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے ہرے. تو ایک دوسرا ادھارن دیا, براہمن کو بچہ نہیں تھا, سنت نے پھل دے دیا, پتنی نے پھل کھایا نہیں, तो बोला कि नहीं, मैं तो बच्चा, मेरे को बच्चा चाहिए ही नहीं। तो उसने फल गाय को दे दिया और अपनी बहन के बच्चे को गोद ले लिया। तो जो बहन का बच्चा उसने अपना मान के रख दिया, उसका नाम हो गया धुंधकारी, वो बड़ा बदमाश निकला। और गाय तो संतु के कृपा से दिए हुए फल से, गाय के वहां भी प्रकट बड़े कान गाय जैसे वाला बच्चा हुआ, उसका नाम गोकर्ण हुआ। और फिर गोकर्ण को पिताजी, वो बच्चा इतना बदमाश हुआ जो बहन से लाई थी धुंधकारी, वो पांच वैश्याओं से शादी कर ली। ये उदाहरण इसलिए दिया, ये हमारी इंद्रियां वैसा है कि हमको कहती है ये करो ये करो, ये लाओ ये लाओ, ये फंसा देती है। तो एक दिन तो उन वैश्याओं ने मार के धुंधकारी को कुएं में डाल दिया। धुंधकारी ने अपनी मां को मार दिया, धुंधकारी भूत हो गया। गोकर्ण बेचारा आके उसका गया में त्रिपण किया, घर में आया तो वो दिखा भूत के रूप में। बोला तुम कौन हो? बोला मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा उद्धार करो। बोला गया ने तुम्हारे तर्पण किया? बोला मैं बड़ा पापी हूँ, माँ को मारा, बाप को घर से निकाला, मेरा कहाँ से उद्धार होगा? तब गोकर्ण ने सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य देव ने कहा भागवत की कथा करो। तो गोकर्ण ने भागवत का आयोजन किया और सबके सामने बांस के अंदर सात गांठ थी, रोज की एक गांठ फटने लगी। सातवें दिन वैकुंठ से विमान आया और धुंधकारी उसमें चढ़ के जाने लगा। तब विमान के चालक को रोक के गोकर्ण कहता है, भाई कथा तो सबने सुनी है, एक ही विमान आया। बोला इसी ने ध्यान से सुनी है, बाकी सबका विचार अपने घर दुकान मकान में था, तो उनका विमान बीच में खड़ा है। तब होकर ने कहा, नहीं नहीं, एक बार जो कथा में आ जाता है उसका तो फोटो भगवान की कैमरा में निकल जाता है, वो तो फिर उसके ऊपर स्टैम्प लग जाती है, उसको भगवान छोड़ते नहीं है, कैसे भी पकड़ के वापस ले जाते हैं। तो फिर गोकर्ण ने दूसरी कथा का आयोजन किया। उस कथा में जितने आए थे सबके लिए वैकुंठ से विमान आया और सब भगवत धाम चले गए। तो ये भागवत के दो महात्म हैं। महात्म भागवत की महिमा के लिए होते। भागवत के पहले स्तंभ के तीन श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण है और मंगलाचरण का उद्देश्य होता है, तीन प्रकार का उद्देश्य होता है मंगलाचरण का। मंगलाचरण में पहले होता है इष्ट देव को प्रार्थना, ये भगवान हमारे काम को संपूर्ण निर्विघ्न संपूर्ण करना, इसको कहते हैं इष्ट प्रार्थना। दूसरा होता है विषय वस्तु का निर्देश कि मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें है क्या, विषय वस्तु क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। और तीसरा होता है आशीर्वाद, जो इसका श्रवण वर्णन करेगा उसको फल क्या मिलेगा। तो मंगलाचरण के तीन भाग होते हैं, इष्ट प्रार्थना, विषय वस्तु का निर्देश और आशीर्वाद। तो पहले श्लोक में भगवान को प्रार्थना है परम सत्य के रूप में, जन्माद्यत तो ये जो भगवान सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, उस परम सत्य भगवान को हम बोध, हमारी बुद्धि सत्यम परम धीमही। पहले श्लोक में गायत्री का मंत्र है, श्रुति वेदांत सूत्र का मंत्र है जन्माद्यस्य। पहले श्लोक के अंदर गायत्री वेदांत सूत्र सृष्टि सब एक ही श्लोक में कथा कर दिया व्यासदेव ने, और फिर सबको साथ लेके कहा सत्यम परम जी वही, हमारी बुद्धि उस परम सत्य में लगे। ये सत्य क्या है, कि सत्य को हम देखेंगे दशम स्कंध में, जब देवता प्रार्थना करेंगे गर्भ स्थित कंस के कारागृह में, सब कहेंगे भगवान सत्य व्रतम, आपका वचन सत्य, आप सत्य हैं। तो जो सत्य परम है वो भगवान श्री कृष्ण है, उसको प्रणाम हम कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में कहते वास्तवम वस्तु, वास्तवम जो वास्तु मन शिवदम सबका कल्याण करने का वाली वस्तु इस भागवत के अंदर है। इस भागवत में वो विज्ञान है, वो ज्ञान है, वो विज्ञान है जो सबका कल्याण करने वाला है। दूसरा ताप त्रिय विनाशनम, सबका मंगल करेगा, सबका दुख नाश करेगा। और इसको महामुनि कृते, ये महामुनि व्यास देव की मैच्योरिटी में कृति है, उन्होंने इसको रचना किया है।
और फिर एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, इसको सुनने के लिए घर से निकलो तो भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान भागवत सुनने वालों के हृदय में आके बैठ जाते हैं। भागवत के दूसरे स्कंध में आता है कि भगवान हम भागवत सुने क्यों, बोले भागवत इसलिए सुननी चाहिए कि भागवत से भगवान निकल के हमारे हृदय में आ जाए। बोले कौन से रिश्ते कौन से रास्ते से भगवान हमारे हृदय में आए, तो कहते कानू के रास्ते से भगवान हृदय में आए, प्रवेश कर्ण रंधराना कान के द्वारा हृदय में। बोले भगवान हृदय में आगे करेगा क्या, तब लिखा है धुनोती समलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण आके सारा मैल धो देगा। हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितना भी कचरा पड़ा है हमसे धुलाई नहीं होगी, हम इसको साफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कर सकते तो इस दुनिया में आते ही नहीं। हम यहाँ दुनिया में आए हैं क्योंकि कचरा कुछ पड़ा है, तो हमसे तो साफ नहीं होगा। जैसे बच्चे का जन्म होता है, बच्चा अपने आप को साफ तो नहीं कर सकता है, माँ ही साफ करती है। तो ऐसे भगवान की प्रार्थना वेद के मंदिर में हम जाके पहले क्या करते थे, तुमेव माता च पिता तुमेव, पहले भगवान को माता कहते हैं। और ये हरे कृष्णा मंत्र में जो पहला शब्द हरे है जो 8 बार आता है ये माता है, ये माता को भगवान की अंतरंग शक्ति, इसको प्रभुपाद लिखते हैं द जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर। ये बच्चा माँ के लिए जैसे ब्लड से रोता है, ये मदरली स्टेट ऑफ गॉड जो है, भगवान का जो मातृ स्वरूप है ये बड़ा दयालु है, ये करुणामय है। ये बहुत जल्दी बच्चे घर में कोई जरूरत होती है तो पिता से ज्यादा माता जी के पास जाते हैं, क्यों, माँ के पास उनकी समस्या का समाधान आसानी से होता है। तो भगवान का मातृ रूप जो है वो हमारे को धो के साफ कर देता है। तो भगवान हृदय में आएंगे तो क्या करेंगे, हृदय को धो के साफ करेंगे, तो क्या होगा, तो फिर भगवान अंदर बैठे दिख जाएंगे। अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं, भगवान कहाँ है, बोला हमारे सबके दिल में। भाई भगवान तो सबके दिल में है ये तो हम मानते हैं कि नहीं, परमात्मा सबके हृदय में बैठेंगे, सर्वस्व आम हृदय वो सब इष्टो, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा, तो उनको दिख क्यों नहीं रहे। और फिर यहाँ भी लिखा है कि हमारा हृदय दर्पण है, दर्पण का मतलब आईना है, अरे आईने के सामने कोई हो तो दिखना चाहिए ना, तो दिखता क्यों नहीं, भगवान हमारी दिल में बैठे हैं तो हमको दिखते क्यों नहीं। बोला शीशे के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, जिस शीशे के ऊपर मैल चढ़ा है उसमें चेहरा नहीं दिखेगा, तो क्या करना चाहिए, बोला शीशा साफ कर दो। चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण रूपी हृदय को साफ करो, किससे साफ करें, परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तनम, जब वो इकट्ठे होके भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो ये संकीर्तन महायज्ञ हृदय को अनादिकाल से जमी हुई धूल को धो के साफ करें। बहुत जल्दी साफ करने का ये बहुत उत्तम साधन है, और ये किताबों के लिखी हुई बात नहीं करे, थ्योरिटिकल बात नहीं करे, प्रैक्टिकली इस हमारे अपने युग में 30-40 साल पहले 50 साल पहले भारत में भी नहीं, वैदिक संस्कृति के नव युवकों के ऊपर भी नहीं, पाश्चात्य संस्कृति के नव युवक हिप्पी बने हुए, बड़ों का अनादर करके घर से निकले हुए, स्कूल को छोड़े हुए, नशे में लिप्त उन लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि आओ सब मिलके कीर्तन करें, और उस कीर्तन को उद्यान में किया गया, किसी पार्क में किया गया, और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि उन पाश्चात्य देश के नव युवकों का जो विद्रोह था, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति जो बिल्कुल बायकॉट करके आ गए थे अपने बड़ों की संस्कृति का, उनके हृदय का पवित्र इतना हो गया कि वो साधु बन गए, वो तो विश्व भर में फिर वैदिक सनातन संस्कृति की शिक्षा देना शुरू कर दी, वो एजुकेशनिस्ट बन गए, जो जानते नहीं थे उनका हृदय पवित्र हो गया। ये तो प्रमाण हमने आंखों से देखा है, इसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, यही उन लोगों के हृदय में परिवर्तन होते हुए देखा है, हजारों की संख्या में नहीं, कई लाखों की संख्या में लोगों का हृदय में परिवर्तन हुआ। तो ये ऑपरेशन, ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके देखा है। भाई कौन माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा नशा करे, कोई माता पिता नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा सिगरेट पिए या शराब पिए, कोई माता पिता नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा कोई बुरे रास्ते पे जाए, तो फिर उनका हृदय कैसे साफ होगा बताइए। ये पोलियो हो जाए तो उससे बचाने के लिए बच्चे को जो ड्राफ्ट पिला देते हैं, खांसी खसराना हो जाए टीका लगा देते हैं, बच्चे का दिमाग ना खराब हो जाए उसके लिए आपके पास कोई टीका है क्या,
कोई इलाज है कि बच्चे का दिमाग खराब नहीं हो, माता पिता की सेवा करना बंद कर देगा? एक ही इलाज है, ये इम्यूनाइजेशन है। ये बच्चों को बचपन में शिक्षा दे दो अध्यात्मिक, तो उनका दिमाग खराब नहीं होगा। वो फिर मात्र देवो भव, ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, जब वापस घर आते थे पढ़ के पूरा करके, तब उनको ये मंत्र दिया जाता था कि तुम्हारे जीवन का भी उद्देश्य मात्र देवो भव, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माता पूजनीय है, उसकी सेवा करना। पितृ देवो भव, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए बहुत आराधना पूजनीय है, उसका सम्मान करना। आचार्य देवो भव, तीसरे नंबर पे जिन्होंने आपको शिक्षा दी है वो आपके लिए बहुत बड़े सम्मानीय है, उनका आदर करना। अतिथि देवो भव, मेहमान कोई आ जाए तो उसका बड़ा आदर करना। ये हमारी शिक्षा पहले वैदिक थी, अब ये शिक्षा समाप्त हो गई कि नहीं होगी? है कहीं घर में माता का सम्मान करने वाले बच्चे, पिता का सम्मान, गुरुजन का? नहीं। ये समस्या है, इस समस्या का समाधान ये है कि बच्चों के लिए भी हमको शिक्षा का कोई न कोई साधन करना चाहिए। कोई न कोई बच्चों को इम्यूनाइजेशन जैसे बच्चों को करना जरूरी है, पोलियो के ड्राप लाना जरूरी है और टीके लगाना जरूरी है, ऐसे उसके मन को भौतिकता के पाश्चात प्रवाह से बचाने के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, उसको सुरक्षा का कवच पहनाने के लिए ये आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है, ये इंडिस्पेंसेबल है, ये होना अति आवश्यक है और इसको होना चाहिए। ये न होने के कारण हमने दुनिया में धन तो बहुत कमा लिया, गाड़ियां बड़ी हो गई, बंगले बड़े हो गए, विल्ला हो गए, लेकिन रहने वाले बच्चे नहीं है, रहने वाले अंदर बच्चे नहीं है, घर बड़े हैं, फैमिली छोटी है, पैसा ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है खर्चने का, सुख लेने का समय नहीं है, बिल्डिंग बड़ी है लेकिन सामने में कौन रहता है उसका पता नहीं है, ये हमारी स्थिति है। कंप्यूटर के ऊपर पूरी दुनिया में क्या होता है इसका पता है, लेकिन पड़ोसी को क्या हो रहा है उसका पता नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ है उसका पता नहीं। ये जो स्थिति अभी आ रही है संसार में, ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। जो 50 के करीब है उनको सोचना चाहिए कि कैसी दुनिया हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। जिस दुनिया में हमारे बच्चे बड़े होकर सांस लेंगे वो दुनिया कैसी होगी, और कितनी वो कट थ्रोट टेक्नोलॉजी वाली दुनिया आ रही है, इसके अंदर उन बच्चों का भविष्य कैसा है, हमने उसके ऊपर चिंतन करना है। थोड़ा नहीं हम सोचेंगे हम धन छोड़ के जाएंगे तो बच्चे सुखी हो जाएंगे, नहीं, धन में सुख नहीं है असल में, उसके अंदर अगर चरित्र होगा तो सुख होगा। कि एक मन सोने से एक माता चरित्र का महान होता है, एक मन का 40 किलो गोल्ड से एक मासा में एक ग्राम से भी छोटा चरित्र महान होता है। तो चरित्र पहले, ये तो अंग्रेजी में पढ़ते थे याद है, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, डन गया तो कोई बात नहीं दोबारा आएगा, हाथ का मेल है, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, अगर स्वर्ग थोड़ा खराब हो गया तो बड़ी चिंता हो जाएगी, करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, चरित्र गया तो सब कुछ सत्यानाश हो गया। ये बचपन में स्कूल में हमको पढ़ाते थे, अब तो ये स्कूल के किताबों से ही निकाल दिया, तो है ही नहीं स्कूल के किताबों में, पहले तो स्कूल के बाहर लिखा होता था आइए विद्या पढ़ाइए, और अंदर लिखा होता था जाइए सेवा कीजिए। ये पहले स्कूल में लिखा हुआ देखा था, आइए विद्या पढ़ाइए, आइए कुछ सीखिए, जाइए सेवा कीजिए, अभी कहीं दिखता है? दिखता है ये नहीं दिखता है, कंसेप्ट चेंज हो गए, जाइए कमाइए, अभी तो अंदर से निकाल जाइए कमाइए, जैसे भी हाथ आए, तो कंसेप्ट चेंज हो गया सर। तो दूसरे श्लोक में ये लिखा है कि भागवत सुनने वालों के हृदय में भगवान आ जाते हैं, हृदय को साफ कर देते हैं, और तीसरे श्लोक में लिखा है कि भाग्यशाली हो तो इस अमृत को पियो। ये अमृत सुखदेव महाराज के मुख से इतना मीठा होकर निकला है कि जब तक आप कथा में होंगे तब तक तो कम से कम आपको चिंता दुख परेशानी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सुरक्षा का कवच हो जाता है। तो इसको सुनिए और फिर कथा शुरू होती है। पहले स्कंध में 19 अध्यायों में 3 संवाद हैं, 3 अध्यायों में सनक और सूत संवाद है, जिसमें कलयुग को रोकने के लिए
सब लोगों के लिए एक ही काम क्या आसान है कि वो लोग के पास समय नहीं है सब शास्त्र पढ़ सकें, तो शास्त्रों का सार क्या है और सबके लिए श्रेय क्या है, सबका भला किससे होगा, ये दो प्रश्न है और छह प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। तो श्रेय सबके लिए अच्छा क्या है? बोले सबसे सबके लिए अच्छा है कि जो सबके हृदय में प्रेम है उसको जागृत किया जाए भगवान के लिए, ये एक ही साधन सबसे अच्छा है। प्रेम सबके हृदय में भरा हुआ है, कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधे कभू नाही, साधन की जरूरत नहीं है, सबके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, अब उसको जागृत करना है। तो जागृत कैसे होगा? श्रवणादि शुद्ध चित्ते कड़ाई उदय, जब भगवान की कथा सुनेंगे तो ये एकदम अपने आप जागृत हो जाएगा। हमारे मित्र एक उदाहरण देते थे कि मई जून में गर्मी में नल जो होते थे पहले उससे पानी नहीं आता था, हवा आती थी। मई जून में नल चलाते हैं हवा आती है, क्यों? वैक्यूम हो जाता है, पानी नीचे होता है लेकिन बाहर निकलता नहीं है। तो लोग क्या करते थे बूढ़े बुजुर्ग, क्या आसान तरीका था उसका, ऊपर से एक बाल्टी पानी डालते थे तो वैक्यूम साफ होता था, फिर पानी निकलता था। ऐसे कृष्ण प्रेम तो हमारे हृदय में है लेकिन माया ने वैक्यूम बना दिया, इसलिए कानून के द्वारा दो चार बाल्टी भागवत कथा की डालेंगे तो फिर वैक्यूम खत्म और प्रेम अपने आप बाहर निकल गया। बहुत सरल, सिर्फ वो बीच में से वैक्यूम को खाली करना है जो हो गया, अंदर पड़ा है कहीं बाहर चलाना नहीं। हम तो एक्सपेरिमेंट यहाँ तो आप तो ये सब वैदिक संस्कृति में पले हैं, आपके तो जो है कहा कहा जाएगा हड मांस रथ में भी राम नाम समाया हुआ है, भाई उठ के मिलते थे राम राम करते थे, ये तो हमारा भाषा ही भगवान के नाम से शुरू होता है जीवन ही। लेकिन हम पाश्चात्य देशों में क्या रशिया आदि में जाके लोगों को एक मिनट आंखें बंद करके कहते हैं आप मेरा हमारे साथ भगवान का नाम का उच्चारण करो, फिर पूछते हैं आपका आपने क्या अनुभव किया, लोग तीन बातें कहते हैं, शांति मिली, सुख मिला, हल्कापन हुआ, आनंद मिला। ये लोग सब कहते हैं जो जानते नहीं है क्या जपा, उनको ये भी पता नहीं है क्या जपा, लेकिन वो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं तो हमको एकदम कहते हैं शांति मिली, सुख मिला और हल्कापन हुआ। तो हम उनसे पूछते हैं कि दुनिया में आप लोग काम काहे के लिए कर रहे हैं, सुख शांति के लिए काम कर रहे हैं या और किसी के लिए कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सुख शांति के लिए, तो सुख शांति बाहर तो नहीं है, तुम्हारे अंदर में पड़ी है ना। यहाँ तो किसी चीज से सुख शांति नहीं मिली, केवल भगवान के नाम उच्चारण से मिली कि नहीं मिली। तो सुख शांति हमारे अंदर में है, उसको खोजना आना चाहिए। ये सात दिन का सत्र उस सुख को खोजने का है, हमारे अंदर पड़ा है उसको खोजना है। एक हंसने की बात मुझे याद आती है, एक बच्चे ने अठानी निगल ली, पेरेंट्स तो बड़े परेशान हो गए, बच्चे को लेके बाहर रोड पे आए, अपनी गाड़ी तो थी नहीं तो हाथ दे रहे थे कोई ले जाए अस्पताल तक, तो अचानक एक गाड़ी रुकी, अंदर से आदमी निकला, का क्या बात है, बोले अस्पताल लेते, बोले क्या हो गया, बोले बच्चा ने अठानी खा ली है 50 पैसा, बोले इधर लाओ बच्चे को। उसने बच्चे को पकड़ा टांग से ऊपर उल्टा और पीछे एक मुक्का मारा, अठानी बाहर निकली। वहां उसका माँ बाप तो बड़ा खुश हो गया, बोला आप कौन से डॉक्टर हैं, गले के हैं, कान के हैं, नाक के हैं, छाती के हैं, पैसा भी नहीं खर्च हुआ, अठाना निकल गया। बोला डॉक्टर नहीं हूं मैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, पैसा कहीं भी छुपाया निकाल सकता हूं, कहीं भी छुपा के रखो निकालना मुझे आता है। सो असल में सुख आपके अंदर पड़ा है, हमको वो निकालने आता है, और आप 5-7 दिन आएंगे तो उसको निकालेंगे, फिर आपका है आप जाके उसका आनंद लेना, सुख आपके अंदर पड़ा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो उन प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत आता है कि कलयुग के अंदर लोगों का भाग्य अच्छा नहीं होता है, बेचारे बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं सारा जन। तो उन लोगों को कोई एक सरल साधन बता दो जिससे वो अपने जीवन को सार्थक कर सके। तब कहते जीवन में अर्थ काय के लिए होता है, बोला अर्थ धर्म के लिए होता है, अर्थ बाहर होता है, अर्थ बाहर है, कभी इधर है कभी उधर है। अर्थ के बाद आता है, अर्थ काय के लिए कमाते हैं, काम के लिए, काम का मतलब एंजॉयमेंट के लिए, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, काहे के लिए पैसा कमाते, बोला एंजॉयमेंट कहा है, बोला मन में, जो काम है उसकी जगह रहने की कौन सी, बोला मन में है, बोला धर्म कहा है, बोला दिल में, धर्म हृदय में होता है, धर्म काहे के लिए, बोला दोनों को नेम रखने के लिए। तो धर्म अर्थ को और काम को नेम रखने के लिए, अगर जीवन में नेम नहीं है तो धर्म नहीं है, और नेम नहीं है धर्म नहीं है तो पृथ्वी बहुत दुखी हो जाती है। तो जीवन नेम वाला होना चाहिए, धर्म से होना चाहिए। तो बाहर अर्थ बाहर है, धर्म अंदर है, दिल में है, उसको जागृत करना चाहिए। और ये कैसे, तो फिर जीवन काय के लिए, जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए, मानव जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। तत्व जिज्ञासा का अर्थ ये है, अपने आप से कभी पूछना, कभी हम लोगों से सामान्य पूछते हैं, आज आप लोग यहाँ इस मिलियनम दिल्ली पब्लिक स्कूल हॉल में सत्संग बस 15 मिनट में समाप्ति करेंगे आज की, तो आप लोग जाएंगे, आपको मालूम है आपका घर कहाँ है, आप लोग हंसेंगे कि हम अपने घर से आए हैं, यही रहने 20-40 साल से, हमें मालूम है हमारा घर कहाँ है, तो बहुत आसान प्रश्न है। लेकिन हम जब ये पूछें कि आज 2014 का 12 दिसंबर है, 2064 के दिसंबर 12 को हम में से कितने लोग इस दुनिया में होंगे, जो आपकी आयु है उसके अंदर 50 साल जोड़ दीजिए, कितने लोग यहाँ होंगे, छोटे बच्चे जो होंगे उस वक्त में हमारी उम्र के हो जाएंगे, ये मानते हैं कि हम यहाँ नहीं होंगे, ये आपको समझ में आ रहा है, तब मेरा प्रश्न है कब कहाँ जाएंगे। अभी तो आप अपने घर जाएंगे, लेकिन एक समय हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, तब कहाँ जाएंगे, कौन हमको रिसीव करने आएगा, ये जिज्ञासा को बोलते हैं तत्व जिज्ञासा, कि जाना कहाँ है और कौन वहां मिलेगा हमको। यहाँ से तो घर जाते हैं तो बैग में बच्चों और सामान उठाते हैं, खाने का सामान भी ले लेते हैं, सामने वाले को फोन करते हैं कि लेने आ जाना, लेकिन इस दुनिया से जब जाना पड़ेगा तब कहाँ जाएंगे, क्या साथ जाएगा और कौन लेने आएगा, ये तीन प्रश्न तत्व जिज्ञासा कहलाते हैं। ये जो पूछता है वो असल में मानव के स्तर के ऊपर है, और जो इसकी चिंता नहीं करता है और खाने पीने मौज उड़ाने सोने में लगा हुआ, वो असल में पशु के स्तर का है। ऐसे नीति शास्त्र कहता है, आहार निद्रा भय भय शून्य पशु भी समाना, पशु के स्तर की बातें, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना रिक्शा, ये तो पशु भी कर रहा है। मानव धर्म अधिको विशेष, अगर धर्म है जीवन में तो मानव है, और धर्म है जिज्ञासा के लिए तत्व जिज्ञासा। फिर तीसरे इस अध्याय में इस जिज्ञासा का क्रम लिखा हुआ है, पहले साधु का संग करना, मैं अरुण जी कह रहे थे प्रथम भक्ति संतन का संग, ये रामायण का है, श्रद्धा से भक्तों का संग करना पहला है, भक्तों के संग से सेवा से दूसरा स्टेज है भागवत का श्रवण, भागवत के श्रवण से हृदय का शुद्धि होगी, रजो और तमोगुण नाश हो जाएगा, सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे, और सत्वगुण में जब आ जाएंगे तो सुख का अनुभव होगा, सत्वगुण सुख को देता है, और तब हृदय में जो गांठें आई हुई हैं अहंकार की और मोह की वो टूट जाएंगी, और जो संशय है वो सारे नाश हो जाएंगे, और कई जन्म के कर्म के फल है वो भस्म हो जाएंगे, और हृदय के अंदर भगवान का दर्शन होगा और अपना भी दर्शन होगा। ये क्रम लिखा हुआ है भागवत में तत्व जिज्ञासा का, ये तत्व जिज्ञासा का कर्म है, भक्तों का संग, भक्तों के संग में हरि कथा, और हरि कथा से हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा तो रजोगुण और तमोगुण कम हो, रजोगुण में लोभ होता है और तमोगुण में आलस होता है, सोया हुआ है। फिर तीन अध्यायों में व्यास और नारद संवाद है, ये जन कल्याण के लिए है, इसमें नारद अपने जीवन की कथा बताते हैं, तीन अपने जन्म बताते हैं। नारद कहते पहले मैं गंधर्व था, उपभ्रंश मेरा नाम था और मैं लड़की के साथ जाता था और गाता था, लेकिन भगवान के गुणगान नहीं किया तो मेरे को श्राप मिला और मैं एक दासी का पुत्र नीच घर में जाके जन्म हो गया। लेकिन वहां मेरी माँ जहाँ रहती थी कुछ ऋषि आके चार महीना चतुर्मास में आके रह गए, मेरी माँ ने उनकी सेवा की और मैंने बच्चे होते हुए भी खेलना छोड़ के उन संतों की सेवा की। संतों ने हमें थोड़ा प्रसाद दे दिया और संतों के प्रसाद और शिक्षा से मैं छोटा बालक होते हुए भी उनके शिक्षा और ज्ञान से संतुष्ट हो गया। चार महीने के बाद संत चले गए, मेरी माँ गाय दुहने गई, रास्ते में सांप ने काटा और माँ भी भगवान के धाम चली गई। तब मैंने कहा अब भगवान की भक्ति करनी है जैसे, और मैं चला जंगल में एकांत में बैठा, हृदय में भगवान दिखाई दिया, बड़ा प्रसन्न हो गया, क्या संतों ने कृपा की, बचपन में भगवान मिल गया और फिर भगवान दिखना बंद हो गया। तब आकाशवाणी ने कहा नारद अभी तक तुम कच्चे हो, अभी तक तुम्हारे हृदय में कुछ थोड़ा सा कचरा है, अब तुम ये साधन करते रहो। इस जीवन के बाद नारद कहते हैं फिर मैं ऐसे ही साधन करता रहा और जैसे ही मेरा ये शरीर टूटा मेरे को आध्यात्मिक शरीर मिला है, तो भगवान ने वीणा दी है और मैं अब पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर सकता हूँ। तो नारद ने अपने जीवन का अनुभव बताया कि भगवान की भक्ति किसी भी छोटे से छोटे स्तर से भी की जा सकती है, केवल भक्तों का संग और कृपा मिल जाए तो आदमी किसी भी स्तर से ऊपर उठ के भगवान का पार्षद बन सकता है नारद का। इसके बाद भागवत के अंदर तीन महान भागवत नारियों का वर्णन है। पहला स्थान भागवत में प्रार्थना का नारी को दिया गया, तीन महान नारियों का वर्णन है, द्रौपदी, उत्तरा और कुंती। ये तीन पीढ़ियों की माताएं जब भगवत भक्त होती हैं तब उनके घर में परीक्षित जैसा पुत्र पैदा होता है जिसके लिए भागवत का अवतार होता है। तो तीन पीढ़ियां, देखो गंगा के उत्तरण के लिए भी तीन पीढ़ियों की मेहनत हुई। दिलीप, अंशुमान, दिलीप, पहले अंशुमान फिर दिलीप और फिर भागीरथ, तीन पीढ़ियों के परिश्रम से गंगा धरती के ऊपर आई और सबका कल्याण कर रही है। तीन माताओं की भक्ति से परीक्षित का जन्म होता है और तब भागवत का अवतार होता है। तब यहाँ बैठ के हम इस देश के भी भले के लिए, सुख समृद्धि के लिए, विश्व के कल्याण और शांति के लिए और अपने मन को शुद्ध करने के लिए यहाँ बैठ के भी हम भागवत का आनंद ले रहे हैं, जो भागवत परीक्षित के माध्यम से दुनिया में आई तो उसने कितना बड़ा कल्याण किया। तो हमारे इस आयोजन का उद्देश्य इस देश का भी हित है, भला है, समृद्धि है, जहाँ हम रह रहे हैं इसका फल इस देश को जाएगा, जहाँ भी हरि कथा होती है तो उसका फल उस स्थान को मिलता है और जिसका अन्न खाते हैं उसको जाता है। तो आप सब लोगों का इसमें सहयोग है, सबको इसका लाभ मिलेगा। तो कथा तीन माताओं का वर्णन है। अब द्रौपदी का, आज द्रौपदी का सिर्फ थोड़ा चरित्र को सुन लेते हैं, कल फिर यहाँ से आगे कथा को बढ़ाएंगे। 5 मिनट अपने पास हैं, फिर आरती होगी और 9:30 तक अपने को बाहर प्रसाद सबको मिलेगा और पुनः कल आपका दर्शन करने के अभिलाषी हमारे सब भक्त रहेंगे। तो ये कथा सातवें अध्याय में आती है, पहले स्कंद के। महाभारत का युद्ध 17 दिन पूरे हुए, 18वें दिन पे दुर्योधन की जांग भीम ने तोड़ दी और दुर्योधन को ढूंढते हुए 3 आदमी कौरवों की सेना में बचे हुए थे। 17 अक्षौणी सेना समाप्त, केवल 3 व्यक्ति बचे थे। दुर्योधन घायल था, उसके अलावा कृपाचार्य, वो तो चिरंजीवी था, मरेगा नहीं, बचा हुआ था। दूसरा था अश्वत्थामा, वो भी चिरंजीवी, आज भी जीवित है, द्रोणाचार्य का। तीसरा था कृतवर्मा, यदुवंश का सेनापति, ये 3 बचे थे। पांडवों की सेना में 5 पांडव और 1 अक्षौणी सेना पूरी बची हुई थी और उनका सेनापति भी जीवित था, दृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र। 1 अक्षौणी 11 में से बची हुई थी, 10 उनकी भी समाप्त हो गई। तो दुर्योधन को खुश करने के लिए अश्वत्थामा ने कहा अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, मेरे को मेरे पिता का बदला लेना है, महाराज मेरे को सेनापति बना दीजिए।
तो दुर्योधन ने दृष्ट अश्वत्थामा को सेनापति बनाया।
ये तीनों एक पेड़ के नीचे जाके बैठे, तो रात को देखा पेड़ के ऊपर हजारों पक्षी बैठे थे, अंधेरे में एक उल्लू आया और सबको मार के गिराया।
अश्वत्थामा ने कहा अच्छी बात है, रात को सब सोए हुए हैं, अभी जाके आक्रमण करेंगे। कृपाचार्य ने कहा अन्याय, बोला अन्याय अन्याय कुछ नहीं है, अब तो मारना है।
अब उस दिन भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ जानते, पांच पांडवों को और सात्यकों को लेकर सरस्वती के तट के ऊपर चले गए, वहां पांडव तो रहे नहीं। ये अश्वत्थामा अंदर घुस गया शिविर में, दोनों को बोला आप बाहर रहिए, जो भागे उसको आप मारना, अंदर जाके मैं सब।
और उसने तलवार निकाल के पहले तो पांच द्रौपदी के बच्चों के गर्दन काट ली और उन गर्दनों को तो अपनी कोटड़ी में बांध दिया और फिर दृष्टद्युम्न को घसीट घसीट के मारा कि तुमने मेरे पिताजी को मारा था। और उसको मारने के बाद एक अक्षौणी पूरी सेना रात रात में समाप्त कर दी।
अब सुबह द्रौपदी जी उठी तो देखा पांच पुत्र मरे हुए, रोने लगी कि तो अन्याय हो गया, युद्ध भूमि में मरते छाती पे अगर बाण लगता तो खुशी होती और ये तो सोए हुए मारे गए, ये तो अधोगति हो गई। उस वक्त अर्जुन ने कहा पांचाली चिंता मत करो, तेरे पुत्र के हत्यारे को मैं पकड़ के लाऊंगा, उसके सर के ऊपर तुम खड़ी होकर अंतिम तर्पण करना उसको। और अर्जुन रथ के ऊपर चढ़ा, कृष्ण सारथी बने, अश्वत्थामा के पीछे रथ भागा है, अश्वत्थामा के घोड़े थक गए और मरता क्या न करता अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अब अर्जुन कहता है श्री कृष्ण आप सब कुछ जानते हैं, मुझे पता नहीं ये सामने क्या आ रहा है, मैं डर रहा हूं।
कृष्ण कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र है अर्जुन, अब तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, इसको रोको। कृष्ण ने अपना, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में अटके। व्यास देव ने कहा इसको वापस ले लो, दृष्टद्युम्न को तो अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था, अर्जुन ने दोनों को रोका, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, मारो इसको, इसका गर्दन काट के दबाओ। अर्जुन कहता है नहीं, गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, हत्या नहीं करूंगा, द्रौपदी के पास ले जाएंगे, जो वो फैसला करेंगे वो ठीक है। तो अर्जुन की परीक्षा कृष्ण ने ली के पुत्र हत्या हुई है, शत्रु को पकड़ा हुआ है और अनर्थ किया है, फिर भी मार नहीं रहा है। यहाँ अर्जुन पास हुआ, बंधा हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने लाए। उस वक्त द्रौपदी ने जो कहा है, छोड़ो खोलो इसको, मुझे मुझे इसको खोलो, ये ब्राह्मण का पुत्र है, हमारे गुरु का पुत्र है। और फिर द्रौपदी ने जो शब्द कहे हैं कि मेरे पुत्र मरे हैं, उन पुत्र के दुख को मैं जानती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी माँ कृपी अपने बेटे के दुख को सहे। ऐसी माँ कोई दुनिया में कि अपने बेटों के दुख को मैंने सहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दुख इसकी माँ को मिले। और फिर द्रौपदी कहती है आप मेरे पांच पति तो जीवित हो, इसका पति भी भगवत प्राप्ति कर दिया, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया द्रोणाचार्य, वो गुरु था, आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण का हत्या करोगे तो आपकी कैसे। ऐसे छह कारण बताए द्रौपदी ने कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही है। भीम कहता है स्त्रियों की बातों के ये कोमल हृदय हैं, इसको तो मारना चाहिए। भीम को तो क्रोध आया, गदा उठा लिया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने चार हाथ बना लिए, दो हाथ से भीम को रोका, दो हाथ से द्रौपदी को रोका। और फिर कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन द्रौपदी की इच्छा भी पूरी करो, भीम को भी नाराज मत करो और मेरा भी इच्छा पूरी करो। और मैं आपको बताता हूं कि वेद कहता है कि ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए और शास्त्र कहता है कि आतिताई को दंड देना चाहिए, जो किसी की हत्या कर दे, किसी की स्त्री को अपहरण करे, किसी के घर को आग जलाए, किसी का माल लूटे, उसको मार देना चाहिए। अब तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगे। अर्जुन समझ गया ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारना चाहिए, इसका अपमान करना इसके लिए मृत्यु के बराबर है। अश्वत्थामा के बाल काट दिए और यहाँ एक मणि लगी हुई थी जन्म से, उसको निकाल लिया और धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा धक्के देके बाहर यहाँ से निकाल लिया। ये द्रौपदी की बड़ी महानता का, बहुत बड़ी भगवत भक्त है द्रौपदी। और इसका यहाँ वर्णन के बाद वो अश्वत्थामा जाते दोबारा छह ब्रह्मास्त्र रवाना किए, छह पांच पांच पांडवों के लिए और एक अभिमन्यु के पुत्र जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ था उत्तरा के उदर में था उसके लिए। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठ के हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयार हुए थे और सब लोग पास में खड़े थे। अचानक उस समय सफेद साड़ी में उत्तरा दौड़ती हुई आई विधवा, पाही माम महायोगिन कृष्ण मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा। कहा कि विधवा विदाई के समय नहीं आनी चाहिए, अच्छा शोकन नहीं है, क्या हो गया? लेकिन उत्तरा ने कहा मैं मर जाती तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, मैं तो पति के साथ सती हो जाती, लेकिन भगवान आपके भक्ति का अंकुर अंश मेरे उदर में है, अभिमन्यु का अंश, इसकी रक्षा करो, आपकी भक्ति की परंपरा की रक्षा करो। एक तरफ उत्तरा प्रार्थना कर रही है, न पांडवों के पास गई, न विभीषण, न कहा अर्जुन को, न कहा युधिष्ठिर को मेरी रक्षा करो, सीधी श्री कृष्ण के शरण में गई। और वहां पांच पांडवों को तो पता ही नहीं है कि ये पांच आ क्या रहे हैं। पांडवों के प्रार्थना करने के बगैर ही भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हुए, एक तरफ तो सुदर्शन चक्र को पांडवों की रक्षा के लिए रवाना कर दिया, पांच बाणों को तो सुदर्शन चक्र ने रोक लिया, और एक तरफ अधीर होकर श्री कृष्ण हृदय से उतरा के उसके उदर में चले गए और गर्भ में इतने अधीर हो गए, तेज तेज गदा भी चलाई, चक्कर भी चलाया और उस बालक की रक्षा कर दी उतरा के उदर के अंदर। और उस वक्त श्री कृष्ण ने महाभारत में तो ऐसे कहा है कि इस महाभारत के युद्ध में मैंने कौरवों और पांडवों में से किसी का पक्षपात अगर नहीं किया है, मैं संभाव रहा हूं, तो ये बच्चा ब्रह्मस्तर से अगर दग्ध हो गया है, जल गया है, तो जीवित हो जाए। और तो उस वक्त परीक्षित वापस प्राण उसका संचार हो गया और वो बच्चा जीवित हो गया। ये अद्भुत बच्चा परीक्षित का यहाँ वर्णन है। इसके बाद वही खड़ी खड़ी कुंती महारानी प्रार्थना करना शुरू करती है श्री कृष्ण को कि आपने कितनी हमारी रक्षा की है। ये कुंती महारानी की प्रार्थना सबसे पहली अच्छी लंबी प्रार्थना भागवत में है। और कुंती महारानी ने जो भगवान से मांगा है आज तक दुनिया में किसी ने नहीं मांगा है, अरे हमारे को दुख दीजिए भगवान, क्योंकि दुख देते हो तब आपकी याद आती है और आप आ जाते हो, अब आप सुख राज दे के जा रहे हो, इस सुख को हम क्या करें। तो ऐसी अद्भुत ये प्रार्थना महारानी कुंती की है, ऐसी प्रार्थना दुनिया में किसी ने, ये प्रार्थना असल में दुख के लिए नहीं है, ये प्रार्थना भगवान के दर्शन के लिए है कि लेकिन उसके लिए कीमत दुख है, दुख आएगा तब भगवान याद आए। दुख दारू सुख रोग भया, दुख दवाई है और सुख बीमारी है, ये संतों ने बाद में इसी को गाया है। तो यहाँ हम कथा को यहाँ विराम देते हैं, कल यहाँ से आगे परीक्षित भीष्म पितामह का दर्शन करेंगे कि इस विश्व के अंदर ऐसा महावीर पैदा नहीं हुआ है, और फिर आगे परीक्षित के जन्म की कथा, और भगवान ने चाहा तो आगे कथा को बढ़ाएंगे। आप सबका धन्यवाद पुनः करते हैं। हरे कृष्ण।